तो कल तक हमने देखा है कि किस प्रकार से निश्चित है कि जड़ पदार्थ ही केवल नहीं है सब कुछ, दो चीजें हैं, जड़ पदार्थ है और जीवन है, दो अलग अलग चीजें। और जो जीवन है वो जड़ पदार्थों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आवश्यक है। तो ये जो भौतिक प्रकृति जिस रूप में है फंक्शनिंग, तो उसके लिए एक कारण होना चाहिए, एक व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति, एक जीव जिसने किसी उद्देश्य से इस सृष्टि का निर्माण किया हो। इस कंक्लूजन तक हम कल पहुंचे थे, ठीक है। तो अभी लॉजिक से हम यहां तक तो पहुंच गए कि यस, देयर मस्ट बी सम सुप्रीम पर्सन। नाउ हु इज ही एंड व्हाट इज द पर्पस, ये जानने के लिए अभी लॉजिक काम नहीं आएगा। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कल कि ये बिल्डिंग का कोई इंजीनियर होना चाहिए, यहां तक तो हम लॉजिक से पहुंच सकते हैं, लेकिन वो इंजीनियर मिस्टर पटेल है या मिस्टर भट्ट है, उसका हाइट कितना है, वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसा दिखता है, ये डिटेल्स लॉजिकली हम लोग पता नहीं लगा सकते। इसको पता लगाने के लिए हमें या तो उसी व्यक्ति से सुनना पड़े, इंजीनियर से, या तो उसके किसी सगे संबंधी से सुनना पड़े, कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति से सुनना पड़े, उसके बारे में भी डिटेल्स जाननी है। तो उसी प्रकार से एक सुप्रीम पर्सन जो है, अभी उसके विषय में जब डिटेल्स जाननी है तो वो तर्क से संभव नहीं है, तार्किक बुद्धि से संभव नहीं है, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके या चिंतन करके, स्पेक्युलेट करके, उससे संभव नहीं है वो सुप्रीम पर्सन को जानना। डिटेल्स, सुप्रीम पर्सन है वो समझ लिए, लेकिन अभी उसकी डिटेल्स को जानना वो संभव नहीं है। उसके लिए क्या तरीका है, केवल पॉसिबल, ओनली पॉसिबल वे कि हम उन्हीं से सुने, क्रिएटर से सुने, क्यों उन्होंने बनाया है, और उनके बारे में सुने कि वो कौन है और हम कौन है, क्या है हमारा संबंध उनका संबंध, प्रकृति का संबंध उनका संबंध, प्रकृति जड़ पदार्थ और हमारा संबंध क्या है। ये तीन विषयों के विषय में जानने के लिए अभी हम डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से सुप्रीम पर्सन पर, उस पर्सन पर जिसने इसको क्रिएट किया है। तो बेसिकली अभी तीन चीज हो गई, एक तो है आत्मा, एक है जड़ पदार्थ की बनी हुई है भौतिक प्रकृति मेटीरियल, और तीसरा है सबका उद्गम द ओरिजिनल पर्सन जो इस सब क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था और उसके बाद भी एग्जिस्ट करता है। अब इन तीनों चीजों का संबंध क्या है ये जानने के लिए द ओनली पॉसिबल वे इज हियरिंग फ्रॉम दैट ओरिजिनल पर्सन। ओके, तो हमने देखा जैसे कल कि नाउ वी स्टार्ट, ओके, वेयर इज दैट वर्ड ऑफ गॉड, कहां है ऐसा लिटरेचर, कहां है उनकी वाणी, हम कैसे सुन सकते हैं, हाउ कैन वी हियर फ्रॉम हिम। तो जो सुप्रीम पर्सन है उनकी जो वाणी, एक गूंज क्यों रही इतनी आवाज, उनका जो वाणी यानी उनके जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें या समझ सकेंगे यस दिस मस्ट बी द वर्ड ऑफ गॉड। तो बाय डेफिनेशन भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि से पहले प्रस्तुत हैं, यानी कि ये भौतिक सृष्टि के गुणों के अतीत होने चाहिए। अगर उनके अंदर भी भौतिक गुण हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो भौतिक सृष्टि से पहले हैं। दैट मीन्स ही मस्ट बी बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर, ही मस्ट बी बियॉन्ड मेटेरियल नेचर, लॉज एंड द क्वालिटीज, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो इस कारण से भौतिक जगत के अंदर ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम मनुष्य को देखें तो हर मनुष्य के अंदर, जो इस भौतिक जगत के अंदर जो जीव हैं, उनके अंदर चार डिफेक्ट पाए जाते हैं वर्तमान स्थिति में। जो भी मनुष्य हैं या जो भी जीव हैं, उनके अंदर ये चार डिफेक्ट हैं। सबसे पहला तो उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उनकी सीमाएं हैं इंद्रियों की। जैसे हमारे देखने की शक्ति की एक सीमा है, क्या हम सभी वेवलेंथ्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमारे सुनने की सीमाएं हैं, क्या हम सभी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, है ना? तो हमारी देखने की क्षमता और सभी क्षमताएं सीमित हैं अन्य चीजों पर, यानी कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमारी इंद्रियां निर्भर हैं बहुत सारी चीजों पर। आंखों की देखने की शक्ति है निर्भर लाइट पर, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते कुछ भी। तो यानी इम्परफेक्शन हो गया, दैट इज वन टाइप ऑफ इम्परफेक्शन, इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज डिपेंड ऑन समथिंग एल्स। और ये सभी जो भी इस भौतिक जगत के अंदर जो जीव हैं, इस भौतिक जगत जिनका भी ये भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है, उनके अंदर ये डिफेक्ट है और है, इज इट नॉट? देन नेक्स्ट डिफेक्ट कि उनके अंदर भ्रमित होने की क्षमता है, दे गेट इल्यूजनड, भ्रमित हो जाते हैं, यथार्थ चीजों को यथारूप नहीं देख सकते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं क्योंकि सेंसेस इम्परफेक्ट है। जैसे अंधेरे में हमें कोई रस्सी दिखती है तो हमें लगता है सांप है, वी गेट इल्यूजन। जैसे वो बीकर में पानी भर के रखा है, उसमें पेंसिल डालें तो पेंसिल विल अपियर बेंट, मुड़ी दिखाई देगी। फिर जैसे हम सभी वर्तमान में इस भ्रम में हैं कि हम ये शरीर हैं, हालांकि हम शरीर नहीं है पर सबके सब इसी भ्रम में हैं, तो ये सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन है मनुष्य की जो भी इस भौतिक जगत के अंदर है। तीसरा, उन सभी के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो हमारे हिस्ट्री के अंदर देखें तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी धोखा देते हैं क्योंकि ईर्ष्या, काम क्रोध लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष, ये सब अवगुण किसी न किसी मात्रा में रहते हैं जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है, आई एम दिस बॉडी। इस वजह से हमेशा दूसरों को चीट करने की प्रोपेंसिटी रहती है। और चौथा, मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, सभी गलतियां करते हैं। तो ये चार डिफेक्ट हैं इस भौतिक जगत के अंतर्गत जो लिविंग एंटिटीज हैं, जिनका ये भौतिक शरीर जिनको ग्रहण करना पड़ा है, इसलिए वो स्वयं कोई भी ज्ञान अपने आप अपनी इंद्रियों से जो भी वो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो इम्परफेक्ट होता है। जब आपके ज्ञान लेने के इंस्ट्रूमेंट यानी हमारी इंद्रियां जब वो ही अपूर्ण हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान अल्टीमेटली हम लेंगे वो भी अपूर्ण होगा। अगर आपका स्केल के अंदर मार्किंग्स गलत हैं तो आप जो भी उससे मेजरमेंट करेंगे इट विल बी रॉन्ग। तो जब हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं तो उससे जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे सिंपली डिपेंडेंट ऑन द सेंसेस, तो दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि इम्परफेक्ट होगा, यानी कि उसको इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। इट विल चेंज, इट विल नॉट स्टे सेम ऑलवेज बिकॉज इट इज इम्परफेक्ट। तो आप देखिए कि मनुष्य के द्वारा अर्जित जो भी ज्ञान है आज तक, जो मनुष्य ने खुद अपनी इंद्रिय अपनी बुद्धि के द्वारा अर्जित किया है, वो सभी ज्ञान को बदलने की जरूरत पड़ती है, नई नई थ्योरीज लाने की जरूरत पड़ती है। एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को रिप्लेस करती है, फिर हम और आगे जाते हैं, फिर एक थ्योरी और फिर पिछली को रिप्लेस करती है, इज इट नॉट? तो जो भी हमारी साइंटिफिक फील्ड के अंदर थ्योरीज नॉलेज है वो इस प्रकार की नॉलेज है जो हम खुद अपनी इंद्रियों से अपनी बुद्धि से इस भौतिक संसार को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके अर्जित करते हैं, और इसीलिए वो सब की सब थ्योरीज इम्परफेक्ट रहती हैं, इसीलिए वो बदलती रहती हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स में नए नए एडिशन आते रहते हैं, है ना, फिजिक्स की थ्योरीज सभी थ्योरीज धीरे धीरे बदलती रहती हैं। तो जो ज्ञान ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो इस भौतिक जगत का नहीं है, जो इससे परे है, उसके अंदर ये अवगुण नहीं होना चाहिए। हिज नॉलेज मस्ट बी परफेक्ट बिकॉज वी हैव सीन, वी हैव थ्योराइज्ड कि गॉड इज मस्ट बी अबव दिस क्रिएशन, और इस भौतिक जगत का लक्षण है इम्परफेक्शंस. सो इफ वी कम अक्रॉस अ लिटरेचर विच इज परफेक्ट, विच डज नॉट चेंज, विच नीड नॉट बी चेंज्ड, विच इज ऑलवेज करेक्ट एट एनी टाइम एट एनी प्लेस फॉर एवरीबडी, ऐसा ज्ञान जो हर समय सही सिद्ध होता है हर व्यक्ति के लिए हर जगह पर, यदि ऐसा हमें कोई ज्ञान मिले तो हम समझ सकते हैं कि दिस मस्ट नॉट बी ए मैन मेड नॉलेज, दिस कैन नॉट बी ए मैन मेड नॉलेज, बिकॉज मैन मेड नॉलेज मीन्स इम्परफेक्ट, मीन्स इट कैन नॉट बी ट्रू ऑलवेज फॉर एवरीवन एट ऑल टाइम्स. तो हमें ऐसा ज्ञान की तलाश है जो परफेक्ट हो, जो हमेशा सही हो, परफेक्ट, इज नो नीड टू चेंज. समय बदलता जाएगा पर वो ज्ञान अटूट रहेगा, ऐसा ज्ञान चाहिए. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी फ्रॉम दैट सुप्रीम पर्सन, इट कैन नॉट बी मैन मेड, ये मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता यदि ऐसा कोई ज्ञान हम देखते हैं. तो संसार में जो भी अलग अलग लिटरेचर अवेलेबल हैं, नॉलेज अवेलेबल हैं, उसमें जो शास्त्र हैं वैदिक लिटरेचर, वो ऐसे हैं जो इस परिभाषा में खरे उतरते हैं. शास्त्र का ज्ञान टाइम इमेमोरियल से, उसका कोई डेट नहीं लगा सकते कब से वो ज्ञान है, जब से ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुआ, बिफोर दैट व्हेन द ह्यूमन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, मॉडर्न हिस्टोरियंस स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, बिफोर दैट दिस नॉलेज, दिस शास्त्र वॉज प्रेजेंट. सो दे डोंट नो व्हाट इज द हिस्ट्री, हाउ इट इज स्टार्टेड. ऑफकोर्स हमारे जो शास्त्र है उसमें बताया है हाउ इट इज स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर इट केम. तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अंतर्गत जो ज्ञान है उसमें बताया गया है कि ये ज्ञान नित्य है, सनातन ज्ञान है. ऑब्वियसली ये ज्ञान सनातन ही होना चाहिए जो परम ज्ञान है, क्योंकि वो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित ज्ञान नहीं है, वो परम पुरुष जो नित्य है उनसे आ रहा ज्ञान है, तो वो ज्ञान नित्य है. वो ज्ञान ऐसा नहीं कि एक समय पर नया एक्सपेरिमेंट करके नया ज्ञान आया, उससे पहले नहीं था, नहीं. तो वो नॉलेज शास्त्र का आप देखें हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू शास्त्रस इट इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के प्रारंभ से वो ज्ञान. और ये सभी जो ज्ञान है शास्त्र ने दिया गया, हर चीज परफेक्टली राइट है. धीरे धीरे जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जैसे जैसे वो खोज कर रहे हैं, तो वो तो नहीं मानते हैं कि शास्त्र ऐसे परफेक्ट हैं, वो तो सोचते हैं कि ये भी एक पीस ऑफ नॉलेज है, मैन मेड, ये भी किसी व्यक्ति ने दिया है. लेकिन दे आर सीइंग दैट जो भी इसके अंदर ज्ञान दिया गया है वो परफेक्ट है. ऐसे कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं. जैसे शास्त्र में एक वचन है कि कोई भी मल होता है किसी भी जीव का, वो कंटेमिनेटेड होता है, इन्फेक्शियस होता है, लेकिन गाय का जो गोबर है वो शुद्ध होता है. अभी मेडिकल दृष्टि से पहले तो सामान्य रूप से ये समझा जाता था कि ये तो फैलेशियस स्टेटमेंट है, ये तो इसका कोई आधार नहीं है, ये गाय के गोबर, अंधविश्वास है कि गाय का गोबर जो है वो शुद्ध होता है, ये अंधविश्वास है. लेकिन आज आधुनिक जो मेडिकल मैन है तो वो लोग एनालाइज किए कि यस, गाय के गोबर में और गोमूत्र में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम आता है. और ट्रेडिशनली ये नॉलेज तो हमारे पास शास्त्रों में सदियों सदियों से चली आ रही है. उसी प्रकार से शास्त्रों में दिया गया है कि जीवन सभी जगह पर है, सभी ग्रहों पर जीवन है, सूर्य पर भी जीवन है. लेकिन आधुनिक व्यक्ति ये सोचते हैं थे कि ये तो अंधविश्वास है, सूर्य पे कैसे जीवन हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो स्टरलाइजेशन हो जाता है, फिर कोई जीव नहीं रहता है, जीवन नहीं रहता है. लेकिन अभी उन लोगों ने देखा है कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, फायर बैक्टीरियाज बोलते हैं उनको. वोल्केनिक इरप्शंस में देखा कि दे आर बैक्टीरियाज विच आर लिविंग ओनली इन फायर, वेरी हाई टेम्परेचर. हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है माँ के गर्भ के अंदर, चार दिन पे क्या होता है, आठ दिन पे क्या होता है, पहले वो मटर के साइज का होता है, आठ दिन पर बेर के साइज का होता है, फिर दो महीने पर ये होल्स बनते हैं, फिर ऐसे करके चार महीने पर ये सब लिम्स निकलते हैं, और फिर हार्ट बीट शुरू होती है एट सिक्स मंथ्स, और चेतना जो है वो इतने महीने पर आती है उसको। ये सब विवरण शास्त्र में बहुत हजारों हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। और आधुनिक वैज्ञानिक अभी जब अल्ट्रासोनोग्राफी से स्टडी किए तो उसी प्रकार का ज्ञान जो उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगाया वही ज्ञान शास्त्र में पहले से वर्णित है। इतने समय पर ये होता है, इतने समय पर ये होता है, इतने समय पर ये होता है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो शास्त्र में दी गई हैं डिस्टेंसेस, उनके आधार पर जो शास्त्र है उसमें आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, पंचांग बनाते हैं। बहुत बहुत समय पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस समय पर चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा इत्यादि सब, नक्षत्र, बारिश इत्यादि सब। तो इस नॉलेज के लिए जरूरी है कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करना आना होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक तो जब तक टेलीस्कोप नहीं था या आधुनिक यंत्र नहीं थे तब तक उनको ये सब की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो बिना टेलीस्कोप के ये सब जानकारी पहले से है। ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान और शास्त्रों में अलग अलग हैं। जैसे शास्त्र के अनुसार सूर्य चंद्र जो है वो सूरज के और बियॉन्ड है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य चंद्र से दूर है। तो वो लोग भी सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स का फोरकास्ट करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक। तो वो कहते हैं देखो हम तो फोरकास्ट करते हैं इसलिए दिस मस्ट बी लाइक दिस, लेकिन शास्त्र के नियमों के अनुसार भी फोरकास्टिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट दैट इज नॉट दैट द प्रूफ दैट ओके सो बिकॉज वी आर एबल टू फोरकास्ट दैट मीन्स इट इज करेक्ट। कोई भी चीज दो तरीके से भी एक ही कंक्लूजन पर निकल सकते हैं, एक ही निचोड़ पे आ सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी आधुनिक यंत्रों के कैसे वो सब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस वो लोग किए। ये जो प्रोसेस है आदमी एक्सपेरिमेंट करता है तो अभी डेवलप हुआ 100-200 इयर्स बिफोर, तो फिर ये सब ज्ञान कैसे उसमें पहले से है। आयुर्वेद का ज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद आजकल मेडिसिन में वो लोग देख रहे हैं कि कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, दे आर मेडिसिन फॉर यू नो वेरी असाध्य रोग के लिए भी उसके अंदर इलाज हैं। ग्रेजुअली दे आर कमिंग टू रियलाइज इट। तो ये कुछ तथ्य हैं। और फिर फोरकास्टिंग, शास्त्रों के अंदर भविष्य की घटनाओं का सटीक वर्णन मिलता है जो सही सिद्ध हुई है। जैसे ये शास्त्रों के अंदर बताया गया कि कैसे बुद्ध अवतार कब आएंगे, बुद्ध के रूप में भगवान कब अवतरित होंगे, क्या करेंगे, कहां पर आएंगे, सब कुछ वर्णन दिया और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ऐसे अनेक फोरकास्टिंग है शास्त्र में पहले से दी हुई है जो सही सिद्ध हुई है। तो ये सब जो है हमको इंगित करता है, बताता है कि ये जो नॉलेज है ये त्रुटि के बिना है, विदाउट एनी मिस्टेक, परफेक्ट, हमेशा से परफेक्ट रही है। कभी उसका एडिशन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शास्त्रों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक कि अभी ये ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए, अभी भगवद गीता के जो ज्ञान था आजकल के जमाने में बदलना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं है। इट रिमेन्स एज इट इज स्टिल टूडे, दैट मीन्स इट इज ए परफेक्ट नॉलेज। वॉट डज इट शो? द सोर्स ऑफ दिस नॉलेज मस्ट बी ए परफेक्ट पर्सन। इसीलिए जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और शास्त्रों में इसका सट स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कैसे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को प्रदान करते हैं उनके हृदय में, और फिर ब्रह्मा इस ज्ञान को अपने पुत्र नारद मुनि को देते हैं और अनेक अनेक ऋषि मुनियों को देते हैं, और फिर उसके आगे व्यासदेव जी को यह ज्ञान आता है और व्यासदेव जी फिर इसको लिखित रूप देते हैं। तो इसको लिखित रूप किसने दिया? व्यासदेव जी ने दिया और इसको इलेबोरेट किया। लेकिन व्यासदेव जी का यह ज्ञान नहीं है, व्यासदेव जी खुद शास्त्रों में कहते हैं यह ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु से मिला है नारद मुनि, और नारद मुनि कहते हैं ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु ब्रह्मा से मिला, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये ज्ञान मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिला, और कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान मेरा है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य अहम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं वेदों का अल्टीमेट सोर्स हूं। तो इस प्रकार ये जो वैदिक नॉलेज है ये परफेक्ट है और ये किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है क्योंकि ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो वैदिक नॉलेज है वो तरीका है यदि हम सटीक रूप से इस सृष्टि के विषय में समझना चाहते हैं तो। ओके, अभी क्या है शास्त्र, किसे हम कहते हैं शास्त्र? तो शास्त्र है उसकी परिभाषा खुद हमें जो वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत और जो आचार्य जो इस वैदिक शास्त्रों को समय समय से देते आए हैं उनसे प्राप्त होती है कि चार जो वेद हैं जो व्यासदेव जी ने जिसको एक्सपेंड किया, एक वेद से चार में उसको इलेबोरेट किया, ऋग साम यजुर अथर्वेद, फिर पांचरात्रि की, ये एक और पीस ऑफ लिटरेचर है, फिर इतिहास पुराण और वाल्मीकि कृत रामायण, ये सब और आचार्यों की इसके ऊपर टिप्पणी जो उसके यथारूप अर्थ के अनुरूप है वो सब मिलाकर के शास्त्र कहे जाते हैं। तो शास्त्र ऐसा नहीं है कोई भी चीज को हम शास्त्र कह सकते हैं, देयर इज ए स्पेसिफिकेशन व्हाट शास्त्र कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो वेद हैं, फिर वेदों के अंदर उपनिषद हैं, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ऐसा सब स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके सबके श्लोक हैं। जैसे एक पुराण है महाभारत, देयर आर 1 लाख वर्सेस महाभारत के अंदर, और महाभारत का एक अंग है भगवद गीता। वैसे देयर इज ए स्पेसिफिक कि शास्त्र क्या है, कोई भी आदमी अपने आप से नहीं बोलता ये भी शास्त्र है, शास्त्र हैज ए स्पेसिफिक डेफिनेशन व्हाट इज शास्त्र, और वही लिटरेचर है जो कि टाइम टेस्टेड है, वही लिटरेचर है जो टाइम टेस्टेड है। इज ऑल नॉलेज उपनिषद ज्योतिष और जो भी हमने व्याख्यान किया दैट वॉज गिवन बाई वेद व्यास, सो वेद व्यास इज द ओरिजिनल पर्सन, जो ग्रंथ वो लिखे हैं दैट इज शास्त्र। ओके, अभी शास्त्रों को, शास्त्र बहुत समय से चले आ रहे हैं तो हम तक कैसे एज इट इज पहुंचे, क्योंकि नॉर्मली देयर इज सम ट्रांसमिशन लॉस, व्हेन आई टेल यू समथिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग एंड द नेक्स्ट पर्सन मेट एंड, लेकिन ये तो सदियों सदियों से चला आ रहा है ज्ञान, तो संभावना फिर व्यक्त की जा सकती है तो पता नहीं कृष्ण भगवान ने क्या बोला और हम तक क्या पहुंचा। सो बट शास्त्र देयर इज ए स्पेसिफिक वे टू एंश्योर that this knowledge is transmitted without transmission loss. What is that knowledge? What is that process? ki knowledge jo hai bina transmission loss ke aaye, to uske antargat jo vyakti gyan lene ke liye utsuk hai shastron ka usko uske liye qualification ki zarurat padti hai, और जो व्यक्ति ज्ञान देने वाला है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब दोनों क्वालिफाइड हैं, ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला, तब जो शास्त्रों को समझने का प्रोसेस है उसके माध्यम से जब जाएंगे वो दोनों, तो देयर विल बी नो ट्रांसमिशन लॉस। तो जो समझने वाला है उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे वो ब्राह्मण होना चाहिए गुणों से, नॉट बाय बर्थ, बाय क्वालिटीज ही शुड बी ब्राह्मण, दैट मीन्स ही शुड बी इन सत्वगुण। तो तीन गुण होते हैं प्रकृति के अंदर, तीन गुणों से द्वारा प्रकृति चलाई जाती है, थ्री क्वालिटीज, क्वालिटी ऑफ गुडनेस, क्वालिटी ऑफ पैशन एंड क्वालिटी ऑफ इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति सत्वगुण में है, सत्वगुण से ज्ञान, ज्ञान जो है वो सत्वगुण के अंतर्गत लिया जा सकता है। तमोगुण रजोगुण में ज्ञान आवृत हो जाता है, इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो शिष्य है उसके लिए प्रथम क्वालिफिकेशन है ही मस्ट बी ए ब्राह्मण। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं होते तब तक उसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। तो शास्त्र ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी मन आया किताब बुक स्टोर पे जाओ, भगवद्गीता उठाओ, वेद उठाओ, पढ़ो, चार एडिशन लेके बैठ जाओ और जो आपको अच्छा लगे जहां जहां से वो सब लेकर के मैं समझ गया शास्त्र। दिस इज नॉट द वे, नो, फर्स्ट यू हैव टू बी क्वालिफाइड ब्राह्मण, देन और भी क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी वेरी मच ईगर टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसको परम सत्य को समझने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए, उसको भौतिक चीजों, भौतिक समाज में प्रगति करना करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहिए। उसका ध्येय क्या होना चाहिए शास्त्रों को समझने के पीछे? परम सत्य को जानना, नहीं कि ठीक है मैं भगवद्गीता पढ़ता हूं, सब लोग भगवद्गीता को बहुत मानते हैं और मैं भी फिर अपना एक एडिशन लिखूंगा भगवद्गीता की टिप्पणी, जिससे मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, सब लोग कहेंगे हाँ भगवद्गीता के ऊपर टिप्पणी, बहुत बड़ा स्कॉलर कहलाऊंगा। सो इफ यू आर हैविंग दिस एटीट्यूड देन यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड शास्त्र। फिर ऐसा जो व्यक्ति है जो परम सत्य को जानने का इच्छुक है, और इच्छुक होने का अर्थ है कि वो जानता है कि मैं ये ज्ञान मुझे परम सत्य से प्राप्त होना है, केवल मात्र मेरे एंडेवर से मैं कभी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, नहीं समझ सकता हूं, तो वो सबमिसिव होता है, हम्बल होता है, ही इज नॉट प्राउड, नॉट इन ए चैलेंजिंग मूड, आई कैन अंडरस्टैंड हु इज गॉड, आई डोंट, आई विल रीड शास्त्र, देन आई विल सी वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग एंड आई विल अंडरस्टैंड एक्सेप्ट ओनली वॉट आई थिंक इट इज राइट। तो इस मूड में, चैलेंजिंग मूड में कोई व्यक्ति परम सत्य को नहीं समझ सकता। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, कि मैं बहुत तुच्छ हूं वो परम सत्य के सामने, इसलिए मुझे अथॉरिटी से सुनना है, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, मैं मूर्ख हूं, आई डोंट नो, आई नीड टू नो एंड आई कैन नो फ्रॉम हिम। दिस ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग शास्त्रस। जो व्यक्ति एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से शास्त्र पढ़ता है, जैसे आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, दिस लाइक एकेडेमिक, ब्रेन से समझने की कोशिश करते हैं, आई विल मास्टर इट, मास्टर्स डिग्री, नाउ आई एम मास्टर ऑफ दिस, उस एटीट्यूड में शास्त्र नहीं पढ़ सकते। किस एटीट्यूड में पढ़ सकते हैं? दैट आई वॉन्ट टू बिकम सर्वेंट ऑफ दिस, नॉट मास्टर ऑफ दिस। देर इज नो मास्टर्स ऑफ भगवद्गीता, यू कैन नेवर बिकम मास्टर ऑफ भगवद्गीता, यू कैन ओनली बिकम सर्वेंट ऑफ भगवद्गीता। सी डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम मेटीरियल नॉलेज के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उससे डिफरेंट क्वालिफिकेशन आर नीडेड टू अंडरस्टैंड शास्त्र। फिर जो गुरु है, बताने वाला व्यक्ति, उसके अंदर भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। शिष्य के अंदर एक और क्वालिफिकेशन है, उस ब्राह्मण है इसलिए क्षमा दमा, ब्राह्मण के गुण होते हैं क्षमा दमा तपा तितिक्षा, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, मन पर संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं पान गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, एक मुंह में बीड़ी है और इधर भगवद्गीता पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं कमेंट्री, प्रोफेसर ऑफ PhD इन भगवद्गीता, व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड भगवद्गीता? तो फर्स्ट रिक्विजिट ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन सेल्फ कंट्रोल्ड, देन ओनली यू कैन एंटर इन टू द डेप्थ ऑफ दिस, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड। सो वेरी हाई क्वालिफिकेशन आर नीडेड। ऐसे जो गुरु है, तो गुरु के अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? कि उसने, वो पहले तो शिष्य रहा हो, ऑब्वियसली तभी वो गुरु बन सकता है। यानी कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। वो जो गुरु है, जो व्यक्ति सुना रहा है, ही शुड हैव फॉलोड ए डिसिप्लिन सक्सेशन, ही शुड हैव बिकम ए स्टूडेंट ऑफ समवन, देन ओनली ही कैन बी ए गुरु। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेल्फ मेड गुरुज, सेल्फ मेड गुरु नहीं चलता। ही मस्ट बी कमिंग इन ए डिसिप्लिन सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम श्री कृष्णा, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पर्सन, तभी शास्त्रों को वो समझाने के लिए काबिल है। और शास्त्रों का उसने शिष्य रहकर के खूब अध्ययन किया हो, उसमें उसको पूरी तरह से निष्णात हुआ हो, ही शुड नो परफेक्टली, और ही शुड स्पीक एग्जैक्टली एज इन शास्त्र, ही शुड नॉट मैन्युफैक्चर हिज आइडियाज। गुरु शुड नॉट मैन्युफैक्चर हिज आइडियाज, नॉट लाइक आई एम ए वेरी ग्रेट स्कॉलर सो आई कैन एड समथिंग। भगवान ने बोला ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने के अनुसार थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अभी कलयुग है, अभी मॉडर्न एज है। वो भगवान को नहीं पता था कि कलयुग में ये होगा, इसलिए आई नीड टू एड समथिंग, सो देन ही इज नॉट ए गुरु, ही इज नॉट ए परफेक्ट पर्सन टू गिव दिस नॉलेज, सो ही शुड नॉट, ही कैनॉट एड, ही कैनॉट सब्स्ट्रैक्ट, ही कैनॉट चेंज शास्त्र। तो ये, और अगेन ही शुड बी गोस्वामी, ही शुड बी सेल्फ कंट्रोल परफेक्टली। ऐसा नहीं कि बस बोल रहे हैं, सब श्लोक याद हैं, लेकिन आचरण कुछ नहीं है। खुद उसके आचरण से ही शुड बी ए परफेक्ट सर्वेंट ऑफ दैट सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम पर्सन। ब्राह्मणे पणे च निष्णातम, क्योंकि अंतिम निचोड़ है कि सुप्रीम पर्सन ने वो जो ज्ञान है, वी आर डिपेंडेंट, वी आर स्मॉल इन कंपेरिजन टू सुप्रीम पर्सन। तो जहां भी एक व्यक्ति बड़ा है और एक व्यक्ति छोटा है, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? जहां पर भी एक व्यक्ति बड़ा है और एक छोटा है, तुरंत क्या संबंध होता है? मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप होता है। यू गो इन योर यू नो फील्ड, बिजनेस फील्ड, यू फाइंड समवन वेरी एक्सपर्ट इन द बिजनेस, इमीडिएटली यू से यू नो योर हैंड्स फोल्ड, प्लीज टीच मी। सो इमीडिएटली द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। तो ऑब्वियसली जब हम यहां पर भगवान की बात कर रहे हैं, सो ही मस्ट बी अ सुप्रीम मास्टर ऑफ अस, दैट मीन्स वी शुड बी सर्वेंट। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को दे रहा है, ही मस्ट बी अ परफेक्ट सर्वेंट ऑफ दैट सुप्रीम पर्सन। तो इस प्रकार से जब ये क्वालिफिकेशंस मीट होती हैं और फिर शिष्य गुरु से ये ज्ञान लेता है, ज्ञान कैसे लेता है? नॉट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। कई बार लोग क्या सोचते हैं, साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक की तरह है, कि बस एक गुरु के सम्मुख जाना है और गुरु को आशीर्वाद देगा, चमत्कार करेगा, हाथ में से कुछ निकलेगा और सडनली मेरे अंदर, एंड आई विल रियलाइज दैट आई एम गॉड, समथिंग लाइक सम मिस्टिसिज्म विल हैपन, सडनली आई विल सम डिफरेंट कलर्स विल अपीयर, सम अनयूजुअल फेनोमेना विल हैपन, एंड दैट इज रियलाइजेशन। कुछ चमत्कार कर देंगे तो वो भगवान दिखा देंगे, ऐसे भगवान दिखा देंगे, बहुत लोग भगवान दिखा देंगे, गुरु भगवान दिखा देंगे, तो दिस इज ऑल फुलिशनेस। तो ये ज्ञान देने की बात है, ज्ञान इट्स नॉट जस्ट सम फैंटेसी, सम चमत्कार। सो दैट मीन्स ही हैज टू स्टडी अंडर द डिसिप्लिन एंड ही हैज टू स्टडी अंडर द गुरु, सो देयर विल बी अ टाइम पीरियड ही विल स्टडी अंडर हिम, अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। गुरु जी उनको सिखाएंगे शास्त्र में से ये और प्रैक्टिस करेंगे, दोनों चीज, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस। जैसे आप अभी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप, what you are studying, your job, yeah, MBA, so now MBA, there is a course, 2 years, it's not like you just went one day inside and the teacher did something and then you came out MBA, it's not possible, so you know, there is a course, you have to undergo that, you have to read those textbooks and you have to do some exercises and so many things and then only you can be given that degree that now you are MBA, so एक सामान्य ज्ञान के लिए जब ये सही है, तो इतना जो सूक्ष्म, इतना गहरा ज्ञान है, वो कैसे मात्र बस चमत्कार से आ जाएगा? तो इसलिए देर इज ए वे, देर इज ए पीरियड, टाइम पीरियड, जिसमें वो शिष्य गुरु से जाके सीखता है, उनसे सुनता है। द प्रोसेस, सुनने ज्ञान लेने का प्रोसेस क्या है? बाय हियरिंग फ्रॉम द गुरु, नॉट चमत्कार, हियरिंग फ्रॉम गुरु, हियरिंग एंड देन अप्लाइंग इट इन हिज लाइफ। तो इस तरीके से ये ज्ञान लेना संभव हो पाता है। तो ये तो बात हुई कि कैसे बिना ट्रांसमिशन लॉस के ये ज्ञान पहुंचता है। नाउ अनदर थिंग इज, देयर इज ए चेक एंड बैलेंस फार्मूला कि शास्त्र को हम सही समझे हैं कि नहीं समझे। देयर इज ए चेक एंड बैलेंस फार्मूला, क्योंकि ये गुह्य ज्ञान है, थोड़ा इट्स वेरी सटल, इट्स डीप नॉलेज। वी आर गोइंग टू एंटर इन टू ए फील्ड विच इज बियॉन्ड अवर सेंसेस इवन, सो इट्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर। सो देयर इज ए चांस दैट यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, यू मे मिसअंडरस्टैंड इट। तो देयरफॉर देयर इज ए चेक एंड बैलेंस फॉर्मूला टू सी दैट, टू एनश्योर दैट यू एग्जैक्टली नो वॉट रियली कृष्णा मीन्ट, द सुप्रीम पर्सन मीन्ट, सेम थिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग यू नो, वी नो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अवे फ्रॉम दैट टाइम। वॉट इज दैट? कि शास्त्रों को चेक एंड बैलेंस फॉर्मूला है कि हमें शास्त्र समझना चाहिए गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीजों के द्वारा। तो हमने प्राइमरी देखा शास्त्र, शास्त्र क्या है ये देखा, वेद व्यास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ वो शास्त्र हैं। लेकिन फिर उनको, फिर मैं देखा कि गुरु के माध्यम से सीखना है, अपने आप से नहीं सीखना है। तो इसलिए एंश्योर हो गया कि शास्त्र एग्जैक्टली वो जो उसका मतलब है सही सही वही हम ग्रहण करेंगे यदि हम गुरु के माध्यम से सीखेंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं व्यासदेव जी से और अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण से। और अनदर थिंग इज प्रीवियस आचार्यस, जो वैदिक नॉलेज है वो महान आचार्यों के द्वारा समाज के अंदर उसका टीचिंग्स होता रहा है। जैसे साइंस है आज, तो साइंस आज समाज के अंदर प्रचार हो रहा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो केयर टेकर हैं, टुडे हु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, पीजे कलाम इज ओके बट ही इज जस्ट एप्लीकेशन अप्लाई पार्ट, हु इज ही, वन ऑफ देम इज स्टीफन हॉकिंग और प्रीवियसली एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। सो दे आर लाइक द पिलर्स ऑफ साइंस, यू नो, पिलर्स ऑफ साइंस। तो ऐसे ही फॉर वैदिक नॉलेज देर आर पिलर्स ऑफ स्प्रेडिंग दिस वैदिक नॉलेज, देर आर पिलर्स जिन्होंने पूरे समाज में ये प्रचार किया है। गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले ऐसे महान आचार्य जिन्होंने ये वैदिक नॉलेज को पूरी सोसाइटी में इसका प्रचार किया है, इसको सिखाया है, तो वो सभी आचार्यों का मत, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्होंने बताई है, लिखी है, लिखित रूप में भी है, वो अंडरस्टैंडिंग हम जिस व्यक्ति से सुन रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, और जो शास्त्र है बुक में लिखा हुआ है वैदिक लिटरेचर में वो अंडरस्टैंडिंग, दीज ऑल थ्री शुड मैच, दैट वे इट बिकम्स फुल प्रूफ, नो चांस ऑफ मिस्टेक, नो चांस ऑफ मिस्टेक। सो दिस इज ए चेक एंड बैलेंस फॉर्मूला। तो हम शास्त्र का ज्ञान किसे कहेंगे? जो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा सही निश्चित होता है वो शास्त्र है, शास्त्र एज एक्सप्लेन्ड बाय गुरु एंड साधु एंड द प्रीवियस आचार्यस, दैट इज कॉल्ड शास्त्र। शास्त्र इज नॉट जस्ट भगवदगीता, क्योंकि नहीं तो भगवदगीता के तो 500 एडिशन है। सो वन में से यू आर सेइंग भगवदगीता इज अथॉरिटी, बट देन इट इज योर भगवदगीता, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवदगीता, लेकिन किसी और की कुछ और अंडरस्टैंडिंग भगवदगीता की। सो देर कैन नॉट बी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवदगीता, देर कैन बी ओनली वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवदगीता। एंड हाउ वी नो दैट, हाउ डू वी नो विच इज दैट अंडरस्टैंडिंग? तो गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जो सही उतरती है, इस तराजू पे जो सही उतरती है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवदगीता, दैट इज दी नॉलेज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। इसीलिए जैसे आप देखें यहां उदाहरण, तो श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तक का नाम, भगवदगीता का नाम दिया है भगवदगीता यथारूप। तो क्यों यथारूप दिया है? Why? यथारूप means as it is. क्योंकि प्रभुपाद जो हैं वो एक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं ये परंपराएं, पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर वर्णित हैं। जैसे आपके यहाँ यूनिवर्सिटी होती है ना, गुजरात यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड कोई भी कॉलेज होगा, दैट इज लाइक एफिलिएटेड, आप उससे पढ़ेंगे तो यू विल गेट द डिग्री एंड विल बी रिकॉग्नाइज एवरीवेयर। लेकिन कोई भी आदमी एक इंस्टीट्यूट का नाम बोर्ड लगा दे और पढ़ाई करना लगे, इफ इट इज नॉट एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी, तब उससे डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार से शास्त्र के अंदर देर आर परंपराज आर देयर, वॉट इज दोज परंपराज, तो उन एक परंपरा में श्री प्रभुपाद जी आते हैं जो भूमिका के अंत में बताई गई है, ब्रह्मा गौड़िया परंपरा स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। फर्स्ट इज ऑलवेज श्री कृष्ण द ओरिजिनल पर्सन, फ्रॉम देयर ब्रह्मा। अनदर परंपरा इट स्टार्ट्स फ्रॉम श्री लक्ष्मी जी। अनदर परंपरा स्टार्ट्स कुमार संप्रदाय, चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र कुमार, फ्रॉम देयर, एंड देन रुद्र फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ये चार परंपराएं हैं जो अभी आजकल जो सेवाइट्स हैं, दोज आर वर्शिपिंग शिवाज, दैट इज नॉट दैट परंपरा। जो हम सेवाइट्स देखते हैं दैट इज नॉट दैट परंपरा, इट्स ए परंपरा वैष्णव परंपरा, दैट मीन्स वेयर लॉर्ड विष्णु इज एक्सेप्टेड एज ए सुप्रीम। तो ये चार परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए ज्ञान, तो प्रभुपाद जी उन्हीं परंपरा में से एक में आ रहे हैं। और वो जो ये लिखे हैं पूर्ववर्ती आचार्य, जो चारों परंपरा के आचार्य हैं, उनका सबका मत एक ही होता है। जैसे रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, निंबाकर आचार्य कुमार संप्रदाय के आचार्य, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के हैं, और ब्रह्मा गौड़िया संप्रदाय के मध्वाचार्य। इन चारों जो आचार्य हैं, इन चारों का जो अंडरस्टैंडिंग है, मत अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र का, दैट इज सेम वन नॉट टू। एवरीबडी एक्सेप्ट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ऑल आचार्य जो भी बोनोफाइड परंपरा में आएंगे, देयर नॉलेज विल बी सेम रिगार्डिंग गॉड, जीवा एंड प्रकृति, दे विल बी सेम। देयर विल बी सम माइन्यूट डिटेल्स विच मे डिफर, बट द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स विल बी सेम। तो इस तरीके से ये नॉलेज, वैदिक नॉलेज जो गुरु शिष्य परंपरा में आती है, अटूट आती है, और यदि हम क्वालिफाइड शिष्य की तरह से अप्रोच करते हैं इस वैदिक नॉलेज को, तो हमें भी वो ज्ञान एज इट इज मिलेगा जो लाखों लाखों साल से चला रहा है। यू विल गेट द सेम नॉलेज जो अर्जुन को प्राप्त हुआ डायरेक्ट भगवान कृष्ण से सुनने में, वही नॉलेज आपको मिलेगा। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए क्या जरूरी है, भगवान से सुनना, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों से समझना, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुनना। तो इस तरीके को कहते हैं, ज्ञान लेने के इस तरीके को कहते हैं अवरोह पंथ, डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज। एक दूसरा तरीका है असेंडिंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज। असेंडिंग प्रोसेस मीन्स नॉलेज गेन्ड बाई अवर ऑन सेंसेज एंड माइंड, नॉलेज गेन्ड बाई अवर ऑन सेंस एंड माइंड, डिपेंडिंग ऑन अवर ऑन सेंस एंड माइंड, दैट नॉलेज इज कॉल्ड असेंडिंग, बिकॉज इट असेंड्स, इट इंप्रूव्स ग्रेजुअली। पहले बहुत प्रिमिटिव नॉलेज था, आधुनिक जो नॉलेज आज है वो पहले बहुत प्रिमिटिव नॉलेज था, धीरे 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 वर्तमान समय में आया। तो असेंडिंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज है। और ऐसे ही जो आज की थ्योरी है वो कल गलत हो जाएंगी, देन न्यू नॉलेज, बेटर नॉलेज, बेटर नॉलेज, असेंडिंग प्रोसेस। लेकिन हमने पहले ही निश्चित कर लिया असेंडिंग प्रोसेस से कैन यू नो गॉड परफेक्टली, नो, बिकॉज असेंडिंग प्रोसेस इज इम्परफेक्ट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट सेंसेस। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन रीच्ड बाई आरोह पंथ हैज टू बी इम्परफेक्ट। एनी डाउट सो फार? सो द ओनली प्रोसेस, ओनली वे टू नो परफेक्टली अबाउट द सुप्रीम पर्सन, अबाउट द क्रिएशन, अबाउट अवर सेल्फ इज डिसेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथ। जैसे उसका उदाहरण लेते हैं कि बच्चा कैसे जानता है कि उसकी माँ कौन है, तो बच्चा ये तो जान सकता है, मान लीजिए किसी का जन्म हुआ अनाथ आश्रम में, उसको पता नहीं कि कौन उसकी माँ है, तो वो देख, वो अपने कॉमन सेंस ये तो समझ सकता है जब बड़ा होगा कि मेरी भी कोई माँ होगी, लेकिन वो माँ कौन है वो कभी भी अपने आप आरोह पंथ से नहीं जान सकता, अपनी इंद्रियों से, अपने एक्सपेरिमेंटेशन से, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि माँ उसके जन्म से पहले है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसके जन्म से प्रारंभ होता है. सो देयरफॉर देयर इज नो वे ही कैन नो द सब्जेक्ट मैटर विच इज बिफोर हिज एग्जिस्टेंस. यानी कि वो विषय जो हमारी इंद्रियों के परे हैं वो हम आरोपण से नहीं जान सकते. तो जो भगवान को समझना है वो तो हमारी पूरी इस मेटेरियल एग्जिस्टेंस से ही पहले का विषय है, इसलिए वो विषय हम अपनी इंद्रियों के बल पर नहीं जान सकते. तो इसीलिए हमें आरोपण से जो हमारा अटैचमेंट है ज्ञान लेने का, उसे छोड़ना होगा यदि हम भगवान को समझना चाहते हैं. तो सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है भगवान को समझने में? भगवान है तो दिखाओ, सबसे बड़ा प्रश्न. भगवान है तो दिखाओ, आप क्या बोलते हैं, भगवान है शो मी वेयर ही इज. अगर आप मेरे को दिखा दोगे देन आई विल एक्सेप्ट, अगर नहीं दिखा सकते दैट मीन्स गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. सीइंग इज बिलीविंग, करेक्ट? सो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट कि अगर भगवान मैं देखूंगा तभी मैं जानूंगा भगवान है, तभी मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं विश्वास करूंगा. आई कैनॉट बिलीव ए थिंग विच आई डोंट सी. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट? Seeing is? Yes. 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 So it is an illogical proposition that if God exists, I must be able to see Him. You cannot see so many things because you cannot, your eyes are not perfect. Seeing includes all senses. I am seeing, we are taking the general sense. Seeing means all senses and mind and brain, everything. Mind brain works on the principle of whatever you perceive through the senses. Mind analyzes that only. So, our capacity to perceive, our capacity to think and analyze is limited. For example, in this room, there are many ants. This is an ant is crawling here. This ant. Now, can this ant understand that this is a hall on the second floor of ISKCON temple, which is in Ahmedabad, which is a city, which is a capital city of Gujarat, which is in India? Can this ant, the most brilliant of the ant, the Nobel laureate ant, can she understand that this room, we are also sitting in this room and she is also in this room, can she understand that this room is a hall in ISKCON temple? She can be any brilliant, the most brilliant. लेकिन ये उसकी समझने की capacity के beyond है. Similarly, we human beings have a level of understanding better than ant, but we cannot say that we can understand everything. This ant starts saying, no, I can understand everything. There cannot exist anything which I cannot understand. That will be foolishness. इसे क्या बोलते हैं? कुप मंडूक न्याय, कुएं का मेंढक. तो कुएं के मेंढक का जानकारी केवल कुएं तक है, उसकी लिमिट वहीं तक है. So what he will understand about the ocean, Pacific Ocean? He can't even imagine what is meant by ocean. He can't imagine even. Because it is beyond his capacity to imagine, beyond his capacity. तो उसी प्रकार से Seeing is believing is कूप मंडूक न्याय. कूप मंडूक न्याय. That no, if God exists, I must see. I must be able to see everything. That means I can see everything. That is Frog's, Dr. Frog's philosophy. कूप मंडूक न्याय. So therefore, this attitude कि हम सब कुछ देख सकते हैं या समझ सकते हैं अपनी ब्रेन से, और मात्र इसलिए कि कोई भी चीज हम नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए ही सब चीज जो भी चीज है वो गलत है. दिस इज रॉन्ग. इट डजंट मीन कि जो भी मेरे को सही में नहीं आ रहा है एवरीथिंग इज राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो भी मेरे को सही में नहीं आ रहा है, जो भी मैं नहीं देखता हूं, कोई कुछ भी मेरे को बोले कि ये है एंड एवरीथिंग आई हैव टू एक्सेप्ट जस्ट बिकॉज आई एम लिमिटेड सो आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट द अदर स्टेटमेंट कि जस्ट बिकॉज आई कांट सी देयरफॉर इट हैज टू बी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. डू यू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट? सो ये जो एडमेंसी है कि हम केवल वही चीज पर विश्वास करेंगे जो हम देखते हैं, इट इज अनसाइंटिफिक, इट इज डॉगमेटिक. सो देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आरोपण से अलावा वी हैव टू, इफ यू वॉन्ट टू नो गॉड, इफ यू वॉन्ट टू नो द सब्जेक्ट मैटर विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ अवर सेंसेज, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ दिस अवरोह पंथ, दैट इज हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी, नॉट हियरिंग फ्रॉम सम नॉन सेंस पर्सन, सम इलॉजिकल थिंग्स, नॉट दैट, बट हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटी. सो वी हैव टू एसर्टेन दैट द सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ द नॉलेज मस्ट बी अथॉरिटी, नॉट सम ऑर्डनरी पर्सन. उसके लिए हमने पहले ही बोला, इफ इट हैज टू बी ए अथॉरिटी, इट मस्ट बी इनफेलिबल. उस ज्ञान को वो कभी गलत सिद्ध नहीं होना चाहिए और वो कभी बदलना नहीं चाहिए. अगर ऐसा कोई ज्ञान है, देन वी मस्ट सरेंडर टू दैट नॉलेज. यस, दिस इज द नॉलेज कमिंग फ्रॉम गॉड एंड नाउ आई मस्ट हियर इट सबमिसिवली, व्हाट इज इट. तो इसलिए भगवान को समझने का एकमात्र रास्ता है अवरोह पंथ. अवरोह पंथ अर्थात भक्ति, ये भक्ति है अवरोह पंथ. और इसके अलावा जो कुछ भी है वो कई हो सकते हैं, ज्ञान, दैट इज पर्सनल एनालाइजिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड ज्ञान मार्ग. बट भक्ति मार्ग मीन्स अवरोह पंथ, दैट यस देयर इज सुप्रीम पर्सन, आई डिपेंड ऑन हिम, आई सरेंडर टू हिम, दिस शास्त्र इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड एंड देयरफॉर आई सबमिसिवली हियर फ्रॉम द गुरु एंड फ्रॉम द प्रीवियस आचार्यस एंड आई सिंसियरली फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस एंड इन दिस वे आई गो फर्दर एंड फर्दर टू अंडरस्टैंड गॉड. दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड गॉड, नो अदर वे. और भगवान स्पष्ट भगवत गीता में बताए हैं यही बात, भक्त्या माम अभिजानाति यावानाश्च अस्मि तत्त्वतः. केवल आप भक्ति से ही मेरे को जान सकते हैं और किसी से नहीं जान सकते. भगवान ये भगवदगीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में सुनाए, तो कुरुक्षेत्र में तो बहुत और भी लोग थे, दुर्योधन भी था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना. क्यों चुना अर्जुन को? तो भगवान कहते हैं भक्तों सी में सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो इसलिए तुम इस रहस्य को समझने के लायक हो, बाकी लोग नहीं समझ सकते. ऐसे होता है, दुर्योधन ही कुडंट अंडरस्टैंड दैट ही इज कृष्ण, ही इज गॉड, ही थॉट ही इज ऑर्डिनरी मैन. तो इसलिए जब तक व्यक्ति आरोपण से डटा हुआ है, ही हैज द प्राइड दैट आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू हियर फ्रॉम अथॉरिटी, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ. एब्सोल्यूट ट्रूथ, टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, he must become a devotee of the absolute truth. He must become a devotee of the absolute truth. He must surrender to this shastra. He must surrender to guru sadhu shastra. He must surrender. Then only the way opens. Tabhi rasta khulta hai bhagwan ko samajhne ka. Tab tak band hai. To agar bhagavad gita ko samajhna hai, shastra ko samajhna hai, to hame bhakt banna hoga. Arthat bhakt banna hoga, arthat स्वीकार करना होगा कि ये जो शास्त्र हैं ये परफेक्ट हैं और मैं इनका दास हूं. जो भी शास्त्र में कहा है आई विल, एवरीथिंग इज परफेक्टली करेक्ट, दो आई मे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इमीडिएटली ऑल द डिटेल्स, बट आई विल फॉलो देम अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल बी करेक्ट एंड ग्रेजुअली आई विल अंडरस्टैंड. जैसे हम क्लास में जाते हैं, मैथमेटिक्स क्लास में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हमको सब कुछ समझ में आता है. सम कैलकुलस और सम इंटीग्रेशन, सम वेरी, टीचर आता है और ये हम बुक खोलते हैं, देर आर सो मेनी फार्मूलाज, इमीजिएटली वी डू अंडरस्टैंड. सो जस्ट इमेजिन एंड यू द वेरी फर्स्ट डे यू से व्हाट इज दिस वेरी स्ट्रेंज लुकिंग फार्मूलाज आर देयर, सम साइंस आर देयर, ट्रिग्नोमेट्री कोस एंड साइन एंड सो मेनी थिंग्स, व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, सो देयरफॉर शट द बुक, आई विल नॉट गो टू क्लास फ्रॉम टुमारो. But because we have understanding that I don't know, teacher knows, and if I follow the instruction of teacher, one day I will understand. And if you do that, then one day you will understand what is this cause and what is this sign and what is this different formulas, and you will be able to explain to others also. But if you walk out from the class, what is this bogus thing, I don't understand, I'm going out from the class. So who will be at the loss? You will be at the loss. So similarly, understanding from the basis that Shastra is perfect, it is a word of God, even though I may not understand everything and the first shot, you should be patient to continue with this divine faith that this is correct, I don't understand. Let me try to understand in a submissive attitude, and then gradually I will understand. If we continue, then we start understanding it. And this has happened in the history always. So many people have understood Bhagavad Gita, and they have perfected their life. तो ये एटीट्यूड होना चाहिए भगवद गीता को समझने के लिए. भक्त बनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि शास्त्र परफेक्ट है. अभी तक किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन? ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट दैट वी नीड टू हियर फ्रॉम शास्त्रस विद नो यू नो स्टिल शास्त्र में पता नहीं शायद कुछ चीजें गलत हो कुछ चीज सही हो. नॉट विद दिस एटीट्यूड. Of course, this faith will become more and more strong as you will follow, as you will read. But at least this initial faith should be is needed that this is a perfect piece of knowledge and I am small, I need to surrender, I need to know it. At least this much understanding is must if you want to enter into understanding Bhagavad Gita. At least this much humility, this much understanding is necessary. That you accept that Bhagavad Gita is perfect source of knowledge and I don't know perfect knowledge. I need to know and I can know if I follow Bhagavad Gita as given by the speaker of Bhagavad Gita, Krishna. If I follow his instructions, I will be able to understand Bhagavad Gita. So, everyone in this class, with this understanding what we have discussed, at least have you come to this point that there is, I must sincerely, patiently, submissively hear message of Bhagavad Gita. Everyone? Okay. Because this is very important. Yeah.
One thing that Bhagavad
Gita
said that
Guru is father and son. Yeah.
That is evident
that Guru is father and son. How? Can you see that? How can you see that? Okay, telescope is made by whom? Human beings. And human beings are imperfect. So just because you can see in telescope, that doesn't mean that it has to be that way. So many things they have seen by telescope which have proved to be wrong. So many things. By telescopes there are so many findings which have been proved to be wrong. It's again, telescopic is not just, telescope seeing is not just like, that seeing. It needs so many calculations. Okay. How do you know that people have gone to moon? No, how do you know? Yes, very interesting, very important question. Just see, we have become so, we have placed our faith in the scientific world so much that whatever they say, we take it for granted that because scientists are saying, they must be correct. We never raise questions because from very beginning we are taught by our parents and everybody. See, this is a teacher. Whatever they are saying, you have to listen that. And so we enter in a very infant, very child, and then they teach us in the college schools. Science is correct. Science have found out this. And then gradually you come to a state that without questioning, you just accept everything whatever the scientists have said to you. Without questioning. So it appears to us as if that they have gone. But really have they gone? How do you know? They have shown some pictures. Correct? They have shown some pictures. Now, actually there are so many ifs and buts in those pictures. There was a movie made, Capricorn 5. Movie. Which was exactly the same pictures were there in that movie. So why the technology was so developed at that time that the whole thing can be just made a movie. Well, there are many ways this phenomenon can be explained. According to the Shastra, it is not the moon which comes in between, it is another planet Rahu which comes in between. It is not the moon which comes in between. So that is also possible if another planet is coming there. Why moon? Okay, one question. Always in every culture of the world, Sunday comes before Monday. All these days' names are based on the graha. So why in every literature, everywhere throughout the world, from every time immemorial, why Sunday is before Monday? There must be some reason behind it. Everyone uniformly throughout the world, every culture, European, Greeks, Greeks were also having a very great knowledge about the astronomy. If you go in the Greeks, the calculation of the time, very fractions of time calculations are there. And our Shastra also. No, very, very small fractions. They were not blind fools. And all of them uniformly accepted Sunday before Monday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. From Earth, the distance is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So why Sunday first and Monday next? Actually, that is even now scientifically, there are two models, heliocentric and geocentric model. According to modern science, in both the ways, all the phenomenon can be described. Heliocentric means if you accept as sun as a center, as well as the earth as a center, in both ways you can explain all the phenomena, can be explained. So, Shastric understanding is, the whole universe is revolving around a central axis. Like a tree which is revolving on its own axis. The whole universe is revolving on its own axis. The pole star, this axis passes through this pole star, then through this earth, and like further down. The whole universe is revolving around that. And the sun, there is only one sun in one universe. Modern scientists say that there are so many, these stars are suns, that is not accepted in Shastras. They are different planets. Sun is only one in one universe. And sun is rotating throughout, around this whole axis. Around this whole thing, system. So this may take some time to understand. But at least be sure, not just because scientists say something, it has to be true. If they really went to moon, why didn't they try to go again? Why they are not celebrating that event even? That was the greatest event in the history of humankind, modern man. Okay? Whenever some great event happens, they celebrate it. But the event of going to moon, there is no celebration. And when they went to moon, what they brought from the moon? Some sand. And that they just got the sand and then there is no life. Sand also has life. If you see Registan, in the sand there is life. And there is a sand, there is no life. If you see the whole thing, it was just a hoax. He spent millions and millions and trillions of dollars to bring sand. If they really didn't know exactly what is there, why should they spend so much money and to just experiment? Is it reasonable for a human being to spend trillions and trillions of dollars just to, for a fun, just to go and see, try what it is? If you are sure that there's going to be life, there's going to be petrol or something which you need it, then you can spend, so much money. You are not sure for anything and you just went there and you spent trillions of dollars and then came back, sorry, there was nothing, just saying. It's a foolish idea. But sir, for knowing you can't, spend, ye sab paisa kahan se aata hai? Itne, just for sake of knowing, itne logo khana de sakte ho, itne kuch kar sakte ho, uski jagah just for sake of knowing what is there. जो आपके इस अर्थ पर है वो तो पहले जान लो, जो लोग आपको वहां जाने से आपकी समस्या क्या सॉल्व हो रही है अर्थ की, जस्ट टू नो व्हाट इज देयर इन द मून, हाउ आर यू गोइंग टू, हाउ इज इट रियली गोइंग टू हेल्प द ह्यूमन काइंड, स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फॉर द सेक ऑफ नोइंग. ओके, फॉर सेक ऑफ नोइंग एनी, फॉर सेक ऑफ नोइंग देयर इज सम, इवन ए कॉमन ऑर्डिनरी मैन विल टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ही विल टेक कैलकुलेटेड रिस्क. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, बट इफ द एक्सपेंस फॉर जस्ट नोइंग इज सो मच, then he won't do it. He's not even sure that whether this knowledge will be helpful or not, whether I'll be able to really know something or not. So how can a scientist who are so responsible, they are most respected throughout the whole universe, billions of the tax, government tax, so much money is devoted to them, such responsible people can be so irresponsible that just for sake of knowing something and which they don't even know whether we'll be able to know something or what will actually be benefit, they will spend so much money if they and they did it. They have done one foolishness and the companies are doing another foolishness. First of all, you spoil your earth and then you go to the Mars to find something from there. Why you first, on one hand, you are spoiling your earth by polluting it, by disbalancing it, and then trying to go there. Pehle aap jahan ho wahan ka solution karo. On one hand destructing, another hand trying to create. If you are really interested in, jaise government is spending millions of dollars how to protect children, neonatal care, thousands of rupees. Another side, encouraging abortion. अगर आपको बचाना है तो फिर उधर मारने की सैंक्शन क्यों दे रहे हो, और अगर मारना है तो इधर बचाने के लिए क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो? If you are, you have to really analyze it. It may not appear how these big big people, Abul Kalam Azad and all this, can be so foolish, but they can be really so foolish. Yes. Ordinarily it appears, oh yeah, ye log kar rahe hain, kuch soch samajh ke kar rahe honge. But if you really analyze, what is the, chandra pe jaake kya mila? Kuch nahi mila. Abhi, now they are going to spend another crores and crores of dollars for going to Mars. Again experimentation. With no real substantial proof that there is life, or even if there is life, what they will do? They are already creating atom bombs to kill life here. If they find life there, what they will do there? This life they want to destroy by atom bombs, by killing each other. What benefit will they get by knowing that there is life? They will throw the atom bombs there also. At least let them stay peacefully, if at all there is life. So you see, it's just madness. It's just idle mind is devil's workshop. This scientist community, sorry, you might think offending, but if you really analyze, instead of practically doing something, trying to just for sake of research, actually there is a whole conspiracy behind it. There was one devotee, he was a scientist in ISRO in Bangalore. He told me that every year there is a sanction of money from the government for their research. Now, every year they have to show how this money was spent. And if at any, in any year, they couldn't spend all the money, then the next year their grant will be reduced. So just to maintain that grant, they purchase TVs and refrigerators and put them in their house or in their factories, in their offices, and label it needed for the research. You can understand what can happen. You know, they are also having Isha, Kaam, Krodh, though they are not free from it. What can they not do? And our leaders who are giving sanction, what brain do they have? देर ऑल्सो थीव्स, अरे भाई तुम भी थोड़ा लो हमें भी थोड़ा दो, बहुत अनसेटिस्फाइड, किसको क्या पड़ी है, जनता का पैसा लो और तुम भी थोड़ा लो हम भी लो, ऐसे समाज में हाउ व्हाट यू आर गोइंग टू बिलीव ऑन देम. सो सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन द साइंटिफिक फील्ड, सो मेनी चीटिंग्स. सो इन फॉर देयर इज अ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, सो मेनी फाइंडिंग्स कम विच आर कंप्लीटली डिस्प्रूविंग डार्विन्स थ्योरी. दे आर फाइंडिंग ह्यूमन रिमेन्स lakhs and lakhs of years before the layers, strata, lakhs of years before. When those findings come, they disappear. They disappear from museum. If you are a science student, you can see from the journals, so many things which are strikingly different from the present understanding, they just remain in journal. They never come to textbooks. Which we are taught in textbooks, there are many theories are already disproved. So either they come in journal and sometimes they disappear even from journals. So much conspiracy goes on there. Anyway, so with this understanding, now we start that what is Shastra now? What is given in Shastra? Shall we start this now? What is given in Shastra? This was the difficult part so far, to bring us to the level that why we should accept Shastra. And once we accept it, now the path is easy. Because now we are know the, seek the knowledge and just take it very simply. If our heart is ready for it, there is. So now the Shastra, the knowledge is that yes, there is a Supreme Person, and Shastra, that Supreme Person is accepted as Ishwaraha Parama Krishna Satchidananda Vigraha. That Supreme Person is called Shri Krishna. He is Shyama Sundar. His color complexion is this. Then his activities are given, what he does. Then the purpose behind creation is given. Everything is given in detail in Shastras, which we will discuss in the next days. What is what? Why this world? Who we are? What is this Prakriti? Why we are made? How we come? What is our relationship? So, but who is God? So Shastra uniformly accept that the person Krishna is a Supreme Personality of Godhead. Srimad Bhagavatam, the first shloka is Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadi Asyataha. Janmadi, Janma, the beginning, maintenance and destruction, this is called Janmadi. These things are due to Vasudevam, is due to Lord Krishna. Lord Krishna's another name is Vasudev, the son of Vasudev, Vasudev. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya जन्मादियस्यतः, जिससे सब चीज का जन्म हुआ है. और फर्दर क्वालिटीज आर गिवन, अन्वयत इतरत्श्च अभिज्ञ स्वराट. दैट ओरिजिनल पर्सन, ही इज अ पर्सन नेम्ड वसुदेव, वासुदेव, एंड ही, व्हाट इज हिज क्वालिटी? अभिज्ञ. अभिज्ञ मीन्स ही इज सेंटियंट, ही इज अ लिविंग पर्सन, ही इज नॉट डेड मैटर, ही इज सेंटियंट. द सेम थिंग विच लॉजिकली वी केम टू कंक्लूजन, the same thing is Shastra affirms. That's again a solidifying factor that Shastra is logical. It is not transgressing any logics. So that Vasudev is a sentient person who knows his creation directly and indirectly. So abhi ek hai jeev aur ek hai paramatma, ek atma aur ek paramatma. Bhagwan kya bolte hain Bhagavad Gita mein? Kshetrajna cha api mam sarva kshetreshu bharata. कि ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहा गया है. दिस शरीर इज कॉल्ड क्षेत्र. क्षेत्र मीन्स फील्ड. तो सोल, जैसे किसान खेत में खेती करता है, एक्ट करता है और उसके बाद उसको फ्रूट मिलता है, उसी प्रकार से सोल इज एक्टिंग थ्रू दिस बॉडी एंड ही रीप्स द फ्रूट ऑफ हिज वर्क. So, इसको क्षेत्र कहते हैं शरीर को. द नोअर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ. क्षेत्रज्ञ मीन्स वन हु नोज दिस बॉडी. तो क्लियरली भगवद गीता सेज दैट आत्मा इज वन क्षेत्र, वन क्षेत्रज्ञ. आत्मा इज द नोअर ऑफ दिस बॉडी एंड देयर इज अनदर नोअर. क्षेत्रज्ञ च अपि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत. नो दैट देयर इज अनदर नोअर ऑफ दिस बॉडी हु नोज साइमल्टेनियसली ऑल द क्षेत्रास, ऑल द बॉडीज. So therefore there are two knowers of this body. There are two people sitting in the body. One Atma and one परमात्मा. आत्मा कैन नो ओनली अबाउट दिस बॉडी, वेयर एज परमात्मा नोज अबाउट ऑल द बॉडीज एट वन टाइम. दैट इज अ डिस्टिंक्शन. देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन दैट आत्मा सो परमात्मा. हैव यू हर्ड दिस? आत्मा सो परमात्मा. आत्मा ही परमात्मा है. आत्मा परमात्मा एक ही है. बट भगवद गीता वेरी क्लियरली सेज देयर आर टू. आत्मा इज देयर एंड परमात्मा इज देयर. एंड बाय लॉजिक ऑल्सो आत्मा परमात्मा मतलब जीव ही भगवान है. अगर हम सब भगवान ही थे तो फिर ये इग्नोरेंस में क्यों आए? अगर हम इग्नोरेंस में आ सकते तो फिर हम कैसे भगवान हो सकते हैं? बाय डेफिनेशन सुप्रीम पर्सन इज बियॉन्ड दिस मेटेरियल वर्ल्ड. मेटेरियल क्रिएशन इज सुप्रीम. सो हाउ कैन ही बी इन द इग्नोरेंस? इट इज नॉन सेंस प्रपोजिशन. एंड शास्त्र ऑल्सो वेरी क्लियरली डिक्लाइन दिस. सो देयर आर टू, जीव एंड परमात्मा. एंड वेरी क्लियरली इट इज सेड दैट कृष्णा इज सुप्रीम गॉड. सो व्हाई वी एक्सेप्ट, शास्त्र क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ डू वी नो दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम गॉड. सो हाउ डू वी नो हु इज दैट सुप्रीम पर्सन? सो ही मस्ट हैव क्वालिटीज ऑफ ए सुप्रीम पर्सन. मीन्स ही मस्ट बी सुप्रीम इन एवरीथिंग एंड देयर मस्ट बी नोबडी सुपीरियर टू हिम. इफ समबडी वी कैन कम अक्रॉस सच ए पर्सनैलिटी देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज दैट सुप्रीम पर्सन. आर यू फॉलोइंग? सो पराशर मुनि, एन अथॉरिटी ऑन द शास्त्रस, ही गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ भगवान. भगवान, भगवान मीन्स द अबोर्ड ऑफ ऐश्वर्य. भग, भग मीन्स ऐश्वर्य. हु इज द पजेसर ऑफ द ऐश्वर्यस? ही इज भगवान. ऑल सॉर्ट ऑफ ऐश्वर्यस, ऐश्वर्यस समग्रस्य वीर्यस यशस श्रियः. सो देर आर सिक्स opulences which include all everything, all opulences. So supreme person is one who is the proprietor of all those opulences perfectly, completely, in full, 100%. That person is Bhagwan. So kya hai wo chha cheez? Wealth, wisdom or knowledge, then strength, that is power, then beauty, then fame and renunciation. These are the six qualities. The supreme must be supreme in all of these, perfectly supreme. So you may find a person who is very rich. Today who is number one? Rich? Pardon? Achha. And what about is the money? There also somewhere? Achha. Achha. I heard in the world now there are one or two something. No. Okay, anyway. So they are. But they may be most rich, but can they claim to be the most beautiful? Can they claim to be the most powerful? Can they claim to be the most renunciate? No. Similarly, there may be Miss Universe. So she's okay, Miss Universe. Very beautiful. But what about the other things? Not there. And another thing is, okay, one person is the most rich, but he cannot say that he is all rich. That means he cannot claim that every property is his property. Okay, among all people you are having the most part, but you cannot say that you are the proprietor of everything. So Supreme God is the one who can claim to be the proprietor of everything. He can claim and he can prove. He can claim and he can prove. He can show that he is the proprietor of everything. So Supreme God is not a joke. You cannot just become a Supreme God. You have to qualify these qualities to be accepted as a Supreme God. In India now there are so many gods appearing now and then. So we have to weigh them in this criteria. To be called a supreme god, they must be like this. They must be the proprietor of all riches. They must be the strongest. All is strength due to them. All is strength due to them. Then all intelligent, all beautiful, all famous, at the same time all renunciate. Tyagi, not attached to this world at all. So do you have in your experience, within this world so far, a person who is having these qualities? Let's see a few of the gods. Maybe sensitive topic. Sai Baba. Many people think that he is Supreme God. Is he even beautiful? Leave about most beautiful. So people are claiming God. Let's go and challenge. If you are God, let me kick you. Let me see if you can even protect from just me, a simple person. Supreme God is one because of whom, jiske, under whose direction the sun is revolving. So can Sai Baba stop the function, the working of the sun? Is he the one who is responsible for this air flowing? But people are so mad, they accept God, someone who can show some mystic power, who can produce some babut, who can produce some chamatkar, some gold. He can produce some gold, and people think, oh, he kahan se wo sona le aaya. Actually, there was one famous, what do they say, PC Sarkar, kya bolte hain unko? Jadugar, magicians. There was a big magician, PC Sarkar. So he once went to this Sai Baba. He first wrote letters, I am PC Sarkar, I want to meet you. So he, no reply. Then he went as an ordinary man. And then he said, as usual, Sai Baba said, what do you want? Because they want, they show their, you know, some mystic powers. So he said, I want Rasgulla. So PC Sarkar, he brought some Rasgullas by his mystic power. And PC Sarkar said, okay. And then PC Sarkar, by his magic power, he brought some Rasgullas. And he said, now you taste this. He tasted his Rasgulla, and then he said, now you taste this Rasgulla. These are fresh Rasgullas. Your were still Rasgullas. So he said that you are also a magician, I am also a magician, I accept myself as magician and you are proclaiming yourself as God. That is the difference. There was a big uproar at that time. People came to beat him. Then they started saying, but I am not saying I am God. I am not saying. These followers are saying. But you are accepting your followers saying that you are God. That means you are indirectly accepting that you are God. If you are not God and they are saying, then you should stop them. You are not doing that. So such cheating is going on in so many ways. So many so-called gods are coming. So we should testify God based on these qualities. He must be supreme in everything. They don't have anything. Some mystic power is small. That's it. But God's supreme mystic power is incomparable to these small, small yogis. A yogi can bring you some gold. But supreme person makes this gold mines. Gold mines. Not just a small golden ring. Gold mine. He is not just someone who can read your mind. He is sitting in your heart and life after life guiding you what you should do to fulfill your desires. Not just reading your mind. That's the power. So shastra mein ye sab yogik siddhiyan hain. अष्ट योगिक सिद्धियां हैं, आठ प्रकार की. ये योगिक सिद्धियों का प्रोसेस है. इसको प्राप्त करने से आप छोटे से छोटा हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, बहुत हल्के हो सकते हैं, और दूसरे का मन पढ़ सकते हैं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध भी कोई चीज प्रस्तुत कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा प्लैनेट भी बना सकते हैं. इतने बड़े बड़े योगी भी होते हैं. प्रेजेंटली सच योगीज आर नॉट टू बी सीन, बट दैट इज पॉसिबल. But they are just yogis. They are nothing in comparison to God. What is God's mystic power? So God's mystic power is, this whole universe is created with no efforts, with no energy involvement from the God. Just by his desire, this whole universe is created and maintained. That is his mystic power. So yogis may have some mystic power, but there is no comparison to God's mystic power. So whenever somebody says that he is God, we should testify him. So one, he should be, so when Lord Krishna was present in this, he advented on this earth, in his own life, he proved that he manifested all these qualities. फॉर एग्जाम्पल वन क्वालिटी इज ही इज मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, नो कंपेरिजन टू हिज नॉलेज, नो कंपेरिजन. सो वी सी भगवद गीता, द नॉलेज गिवन इन भगवद गीता. डू यू फाइंड एनीथिंग इन कंपेरिजन टू दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता थ्रू आउट द हिस्ट्री? इज देयर एनी अदर लिटरेचर विच कैन कम नियर टू दिस भगवद गीता? Why are these different religions are operating? Yeah. Okay. If he is a supreme god, then why does he set, doesn't he set right the problems? Why is he allowing the problems? Why is he allowing the terrorists? Why is he allowing this? Why does he stop him? For that we have to go a little bit more in detail of why this material world is created by him. When we will understand that purpose, then your questions will be answered. So that will answer that. But when Krishna presently, he was present here, practically in through his activities you can see, at the age of 6, Putana, a demoness, was killed. When she lay dead, her body was 12 miles long. At the age of 7, lifted Govardhan Parvat, the whole Parvat. When Yashoda wanted to see inside the mouth, she saw the whole universe. These are all descriptions in the Shastras. Now, immediate response is, maybe these are stories. Maybe this is not true, this is just stories added up. But Shastras, this is from Shastras, this is from the same literature written by Vyasdev. So how can you expect the Vyasdev, who is writing such a big knowledge as Jyotish Vigyan and Ayurveda, and he will indulge in writing stories, fabulous stories? The people who were hearing those stories, when Bhagavatam was recited, there was Shukadev Goswami was reciting it, Vyasdevji was sitting and he was reciting it to Parikshit Maharaj, there was Narad Muni and all people were there. If you see their life, they were all above the ordinary man's life. They were not at all attached to this world, they were having very divine qualities. If these stories are just foolish, childish stories, and Parikshit Maharaj had only 7 days left before he was cursed that he will die in 7 days. So he then wanted to hear the absolute truth, and then Shukadev Goswami came and all the big rishis who were above, even Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya, they were all above this. They were all so learned. Just imagine, if these are all fabulous, fictitious stories, they will be fools to waste their precious time hearing those stories. If these are just stories, such people who have got no interest in this world will have interest in such listening such stories. Now from other angle, oh, how can it be that a boy can lift Govardhan and he can kill Putana? But we already accepted that God is not one of you. He is not a part of this creation. Just imagine, what is this creation? What are you talking about? Just to make a supercomputer, a super brain is needed. And this supercomputer, what is this supercomputer in comparison to this whole existence? This supercomputer is nothing in front of this computer which we have every day using. Nothing. If you are a student of medicine, you will know, scientists previously thought that cell is a simple structure, there is a cell wall and some chemicals are filled in it. But when the microscope was invented, as they started seeing, they were baffled. What is this? Still today, they don't even know exactly the cell wall structure. They can't even understand the cell wall structure. One scientist gave the statement, more we study, more we find that we don't know, less we know. More we study, we know that less we know. That is the situation. जितने गहरे जाते हैं उतना लगता है कि हम कम और कम जानते हैं और कम जानते हैं और कम जानते हैं. सो जस्ट इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज डूइंग दैट. जस्ट इमेजिन इज अहमदाबाद को चलाने के लिए, ट्रैफिक को चलाने के लिए क्या कितना दिमाग लाना पड़ता है. दिस बिग बिग यूनिवर्स इज जस्ट रोटेटिंग एंड जस्ट विदाउट एनी मिस्टेक. नॉट दैट सन इज हेल्ड अप इन अ ट्रैफिक जैम समवेयर एंड यू कुडंट कम ऑन टाइम टुडे एंड सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर हिम. व्हाट हैपेंड? इट्स ऑन टाइम एवरी डे सिंस टाइम मेमोरियल. देर इज नो रिकॉर्ड दैट देर वॉज अ ट्रैफिक जैम समवेयर इन द हिस्ट्री. नो सच थिंग. So we can imagine what a brain is needed to do that. So for such a brain, what is so difficult to lift a Govardhan? He is already lifting earth and millions and thousands of universes are floating. So how is it difficult? So we are talking of God. How can we expect that God has to be somewhere, maybe humse sava guna. Ek aadmi us din behas kara tha. Bhagwan ho sakta hai humse sava guna ho. Sava guna nahi, he is beyond your power of imagination. Is beyond your power of imagination. Only way to know him is just to hear from him. That's it. You can't just like frog philosophy. Ocean kitna bada hoga? 3 feet ka mera kuwa hai. 6 feet? 6 nahi. Acha 12 feet. Jaise feet feet karke jayega to kaise kabhi ocean ki lambai tak pahunchega? He cannot. So similarly, these are not stories. These are not stories. These are truth. But they appear to us as stories because हम लोग इस भौतिक जगत के अंदर हैं एंड वी आर टॉकिंग ऑफ अनदर वर्ल्ड अनदर एग्जिस्टेंस अनदर डायमेंशंस. सो लॉजिकली दिस इज जस्ट बिकॉज वी इट इज नॉट इन अवर एक्सपीरियंस डजंट नेसेसिटी इट हैज टू बी रॉन्ग बट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ शास्त्र सो विच इज हैविंग सच ए गुड सच अ हाई पीस ऑफ नॉलेज देयरफॉर इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एज परफेक्टली ट्रूथ. ओके सो वी विल स्टॉप हियर. Now the time is up. So we started now understanding about Shastras, who is God. And not only Krishna says that he is God, but all the Acharyas accept he is God. The people who personally experience that he is God, like Arjun, personal experience that he is God. Very elevated people, not ordinary tambaku wala, paan wala, chai ki lari wala. They are very big, big people, very learned. So we can't just reject their opinions. So what? You are nothing in front of them. So you have to accept them. You are much, much lower than them. If you reject them, that means you are thinking you are better than them, which you are not. From any angle you can take. These rishis, this Vyasdev, from any angle you can take, he is better than you. So if you reject his opinion, that means you are pride that you are better than Vyas. That is a foolish proposal. So when this Vyas is saying something, there is some substance in it. So you need to know it. You can't just reject it. Because I can't understand, so it must be wrong. Then you remain wrong. Then you remain fool. You don't know anything then. Okay? So, So this way, Shastras clearly say that Krishna is God. And by personal experience, by personal, he proved also. Not just by theory, by proof. Similarly, any avatar has to prove, and it has to be in the Shastras. All the avatars are mentioned in Shastras, in advance, Kalki avatar, Buddha avatar, everybody. So to accept anybody as incarnation of God, his mention should be there in the Shastras. His name, his place of birth, his father, mother through whom he will come, and his activities, what he will do. When all these things are there, and then personally that personality's behavior should match all these things, then only we can accept someone as incarnation, not otherwise. So today in Gujarat, there is one incarnation, which is Gujarati incarnation, Mr. Patel's incarnations. But we have to see from the Shastras whether the description is there from the Shastras or not. Are the activities mentioned? Is it there, that activities? If not, then we can't just sentimentally accept as God. So therefore, for a very important lesson, please, we have to be very careful in understanding God. It's not just a matter of blind faith. Hare Krishna. Any questions about this?
Other direction.
अगर देर आर टू वेज ऑफ पेइंग ऑब्सेंसेस, फर्स्ट इज स्ट्रेट एज यू आर सेइंग, बट देन व्हेन इन द टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड अपोजिट डायरेक्शन देर इज गरुड़ा और देर इज ए लाइक श्री प्रभुपाद गुरु एंड आचार्य इज देयर, सो वी कैनॉट शो अवर लेग्स टू देम, therefore we don't do. Then the next way to do it by keeping our left hand towards warm, left side towards Lord. Any other question?